नमस्कार भारत, आज है 2 मार्च, दिन बृहस्पतिवार। मैं हूं मोहनलाल शर्मा। जाट आरक्षण की मांग पर डटे आंदोलनकारी आज दिल्ली में उठाएंगे आवाज।
32 दिन से हम लोग लगभग 10 लाख से लेकर 40 लाख लोग तक धरने पे बैठे हुए हैं, और जब उसका कोई हल नहीं निकला तो हमें मजबूरन दिल्ली में प्रदर्शन करके और दिल्ली के घेराव की रणनीति घोषित करनी पड़ी।
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के खिलाफ ऑनलाइन अभियान छेड़ने की वजह से चर्चा में आई गुरमेहर कौर की सुरक्षा को लेकर चिंतित है परिवार।
जितना भी जो कुछ वहाँ हुआ है उसमें शांति चाहते हैं। वहाँ दिल्ली में जो विद्या मंदिर हैं, जिनको हम विश्वविद्यालय बोलते हैं, वहाँ ऐसे झगड़े नहीं होने चाहिए।
दुनिया जहान में अफगानिस्तान में इस्लामिक स्टेट के 2 साल की पड़ताल, लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार, अमर शर्मा से। हरियाणा में सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में जाटों को आरक्षण की मांग कर रहे आंदोलनकारी आज दिल्ली में इकट्ठा होंगे। अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति के नेता यशपाल मलिक का कहना है कि अब वे दिल्ली का घेराव करेंगे। साथ ही उनकी मांग है कि आंदोलनकारियों पर दर्ज किए गए मुकदमे वापस लिए जाएं और जेलों में बंद जाटों को छोड़ा जाए। आरक्षण आंदोलन को लेकर हरियाणा में पिछले साल बड़े पैमाने पर दंगे और हिंसा हुई थी, जिसके बाद बड़ी संख्या में जाटों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए थे। ब्रिटेन की संसद के उच्च सदन हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने उस प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया है जिससे ब्रिटेन के यूरोपीय संघ छोड़ देने के बाद भी सरकार को ब्रिटेन में रह रहे 30 लाख से ज़्यादा यूरोपीय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करनी होगी और इन्हें ब्रिटेन में रहने की अनुमति देनी होगी। ब्रेग्जिट की प्रक्रिया शुरू करने के लिए संसद में बिल पारित करने में यह सरकार की पहली हार है। इस बिल में देरी हो सकती है, लेकिन वो रद्द नहीं होगा। प्रधानमंत्री टेरेसा मे ने कहा है कि वो ब्रिटेन में यूरोपीय संघ के नागरिकों को आश्वासन देना चाहती हैं, लेकिन एक ऐसी ही पारस्परिक गारंटी के बिना। ऐसा करने से यूरोपीय संघ में ब्रिटिश नागरिक नाउम्मीद और बिना मदद के फंसे रह जाएंगे। ब्रिस्टल में रहने वाली जर्मन कंसल्टेंट माइक बोन द 3 मिलियन संस्था की सहसंस्थापक हैं, जो ब्रिटेन में EU के नागरिकों की मदद करता है। बीबीसी से बातचीत में उन्होंने संसद के फैसले पर खुशी जताई।
Our world was turned upside down, really. Many of us have come here in good faith decades ago.
दशकों पहले हमारे जैसे कई लोग यहाँ विश्वास के साथ आए थे। ब्रिटेन के लोगों से शादियाँ हुई, ब्रिटेन का ख्याल रखते हैं हम यहाँ रह रहे हैं और काम कर रहे हैं। कुछ लोगों के पास काम नहीं है और कुछ मानकों को पूरा नहीं करते हैं। उनका अस्तित्व खतरे में पड़ गया था। हम वास्तव में हमारे अधिकारों की एक तरफा गारंटी की दिशा में इस पहले कदम का स्वागत करते हैं। माइक बोन के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। फ्रांस में मध्य दक्षिणपंथी राष्ट्रपति उम्मीदवार फ्रांसवा फिलो ने प्रत्याशी पद छोड़ने से इनकार कर दिया है, बावजूद इसके कि मजिस्ट्रेट ने उनसे कहा है कि उनकी आधिकारिक जांच होगी। फिलो इन आरोपों को लगातार नकारते रहे हैं कि उन्होंने अपनी पत्नी और बच्चों को सरकारी पैसे का भुगतान किया, जिस काम को उन्होंने किया ही नहीं था। उन्होंने जोर देकर कहा कि वे खुद को अप्रैल में फ्रांस के मतदाताओं के फैसले के हवाले करेंगे। उन्होंने न्यायपालिका पर उनकी उम्मीदवारी को खत्म करने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। मेरे कई राजनीतिक दोस्त और वे लोग जिन्होंने प्राइमरी चुनाव में मेरा समर्थन किया है, और 4 लाख मतदाता एक राजनीतिक हत्या के बारे में बात कर रहे हैं। ये वास्तव में एक हत्या है और ये अभूतपूर्व है। ये सिर्फ मेरी नहीं बल्कि राष्ट्रपति चुनावों की भी हत्या है। फ्रांसवा फिलों के शब्द। सीरिया की सरकारी सेनाएं प्राचीन शहर पलमायरा को चरमपंथी इस्लामिक स्टेट के कब्जे से मुक्त कराने के लिए अभियान में कथित तौर पर शहर में दाखिल हो गई हैं। यूनेस्को के मुताबिक पलमायरा में प्राचीन भग्नावशेष हैं जो संस्कृति के लिहाज से काफ़ी महत्व रखते हैं। पर्यवेक्षकों का कहना है कि रूस समर्थित सीरियाई सेना शहर के बीचों बीच तक पहुंच चुकी है, हालांकि आत्मघाती बम हमलों की वजह से उनकी रफ्तार थोड़ी धीमी हुई है। संघर्ष के दौरान पलमायरा में नियंत्रण कई बार बदलता रहा है। 2 साल पहले चरमपंथियों ने इस प्राचीन शहर के कुछ हिस्सों में धमाका कर 2000 साल पुरानी इमारतों को नष्ट कर दिया था। उत्तरी सीरिया में तुर्की समर्थित विद्रोहियों ने कथित तौर पर उन लड़ाकों पर हमला शुरू कर दिया है जो अमेरिका की सहयोगी हैं। मनबिज शहर के पश्चिम में संघर्ष जारी है। ये इलाका सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस के कब्जे में है, जिसमें ज़्यादातर कुर्द लड़ाके शामिल हैं और इन्हें अमेरिका का समर्थन हासिल है। तुर्की का मानना है कि इनका कुर्द लड़ाकों से बहुत नज़दीकी संबंध है, जो तुर्की में विद्रोह कर रहे हैं। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम को आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी लाइव सुन रहे हैं। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। हरियाणा में जाट आरक्षण आंदोलनकारी अपने आंदोलन को तेज करने की चेतावनी देने के बाद अब दिल्ली में अपनी आवाज उठाने के लिए आज जुट रहे हैं। सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण की मांग को लेकर पिछले साल जाट आंदोलनकारियों ने हरियाणा को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया था, लेकिन इस साल से जाटों ने अपनी रणनीति बदल दी है। इस साल हरियाणा के कई शहरों में जाट आंदोलनकारी शांतिपूर्वक धरने पर बैठे रहे। जाटों ने बिजली और पानी के बिल, सरकार से मिले ऋण की किश्तें न भरकर असहयोग आंदोलन का रास्ता भी खोजा है। हमारी सहयोगी हरिता कांडपाल ने अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति के नेता यशपाल मलिक से बात की और पूछा कि अब दिल्ली की ओर रुख करने का क्या मकसद है।
देखिए, 32 दिन हमें हो गए हैं, आज 33वां दिन है। 32 दिन से हम लोग लगभग 10 लाख से लेकर 40 लाख लोग तक धरने पे बैठे हुए हैं, और जब उसका कोई हल नहीं निकला तो हमें मजबूरन दिल्ली में प्रदर्शन करके और दिल्ली के घेराव की रणनीति घोषित करनी पड़ी कि जब तक 50 लाख के करीब लोग दिल्ली में आने की संभावना है 20 मार्च को, और वे सब अपने ट्रैक्टर ट्रॉली खाने पीने का इंतजाम करके आएंगे, तो उसी के बाद जो है ये सब चीजें संभव हो सकेगी कि केंद्र सरकार की भी आंख खुले कि हाँ, इनके साथ जो अन्याय हरियाणा में हो रहा उसमें केंद्र सरकार की दखलअंदाजी हो, क्योंकि प्रदेश और केंद्र में एक ही सरकार है।
आप किन मांगों को लेकर आप आए हैं?
देखिए, हमारी 7 मांगे हैं। एक हरियाणा में रिजर्वेशन की मांग है जो अभी हरियाणा हाई कोर्ट में है, और केंद्र के रिजर्वेशन की मांग है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट को देना है। दूसरी मांग है हमारी, जो फरवरी 2016 में आंदोलन में हिंसा आ गई थी उसमें जो मुकदमे दर्ज हैं उन मुकदमों की वापसी की है। जो और तीसरी मांग है, जो बच्चे जेलों में बंद हैं उनको जेल से रिहाई की है। और चौथी मांग है, जो आंदोलन के दौरान घायल हुए उनको मुआवजे की है। पांचवी मांग है, जो आंदोलन के दौरान शहीद हुए उनके आश्रितों को नौकरी दी जाए। और छठी मांग हमारी है कि वहाँ बीजेपी के सांसद राजकुमार सैनी ने, जो दंगा कराने में मुख्य अभियुक्त थे, उनके खिलाफ सरकार कार्रवाई करे। और सातवीं मांग है, जो अधिकारी और कर्मचारी जिन्होंने दोहरी मानसिकता का परिचय दिया उनके खिलाफ कार्रवाई। और दिल्ली आने का हमारा उद्देश्य ये है कि आगे हम लोग किस तरह से आगे अपने आंदोलन की दिशा को चेंज करें, जिसमें यहाँ से एक दिल्ली कूच का ऐलान हम डेट का करेंगे।
ये बताइए कि हरियाणा सरकार ने जो है आप लोगों को आरक्षण का वादा किया था, लेकिन कुछ हो नहीं पाया है। क्या आपको लगता है कि भाजपा आपका साथ नहीं दे रही है?
हाँ, कहीं ना कहीं उसके मन में दोहरा है, क्योंकि जो भाजपा ने वहाँ पे किया है वो इस तरह का किया है कि भाई वहाँ जाट और गैर जाट के बीच में झगड़े कराने का काम किया है, जिसी तरह से मुजफ्फरनगर में हिंदू और मुस्लिम के दंगे कराने का काम किया था।
अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति के नेता यशपाल मलिक को आप सुन रहे थे। तो कार्यक्रम में हम सीधा रुक कर रहे हैं, सलमान रावी के पास हम चल रहे हैं। सलमान रावी इस जाट आरक्षण आंदोलन को कवर करते रहे हैं। सलमान, स्वागत है आपका कि इतनी सुबह आप कार्यक्रम में लाइव शामिल हो रहे हैं। ये बताइए कि इतने दिनों से आंदोलन पर बैठे हैं ये नेता, सरकार क्या कह रही है?
शुक्रिया मोहनलाल जी, और मैं आपको बताऊं कि ये एक ऐसा मुद्दा है जो गले की फांस बनता जा रहा है हरियाणा सरकार के लिए भी और केंद्र सरकार के लिए भी, क्योंकि ये जो इनकी मांगे हैं ये सब मान लेना ये एक बड़ी चुनौती है। क्योंकि क्या है कि सरकार को लगता है कि अगर ये मांगे, खासतौर से आरक्षण का जहां तक सवाल है, अगर उसको मान लिया जाता है तो उसके बाद से जो दूसरी जातियां हैं वो वहां से मांगे शुरू हो जाएंगी इस तरह की। हालांकि ये जो इनकी मांग है इसको लेकर सरकार ने पहले एक बार इनको आरक्षण दिया था, लेकिन यह आरोप लगता रहा है दूसरी जातियों का कि जाट सबसे संपन्न समुदाय है हरियाणा का, जिनके पास ज्यादातर खेती है और जमीनें सब इनकी हैं।
तो सलमान, ये बताएं, सरकार वादा कर चुकी है, वादा कर चुकी थी, दिया भी, तो पेच कहाँ फंसा हुआ है?
पेच सरकार की तरफ से नहीं फंसा है, पेच फंसा है कोर्ट की तरफ से। कोर्ट में इस जब उनको दिया गया आरक्षण, तब किसी ने जनहित याचिका दायर करके उसको चुनौती दी और कोर्ट ने फिर फैसला दिया कि ये गलत किया है सरकार ने। अब जाट जो है वो मांग ये कर रहे हैं कि विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर ये आरक्षण का जो एक वैधानिक प्रावधान है वो स्टेट की असेंबली में बाई लॉ एक्ट बनाकर उसको जो है वो पास किया जाए। तो ये जो है ये तो हुई बात आरक्षण की।
हाँ।
जो दूसरी मांगे हैं जो पिछले साल जो जाट आंदोलन हुआ था उसको लेकर जिनके खिलाफ में मामले दर्ज हैं उनको वापस लेने की ये बात कह रहे हैं।
सात मांगे हैं इनकी जिन पे ये डटे हुए हैं।
ये भी हैं जी, तो ये भी संभव बहुत, क्योंकि जो गैर जाट बरादरियों का जो नुकसान हुआ है अगर उनके खिलाफ में मुकदमे वापस लेकर जो लोग आरोपी हैं उनको बाहर कर दिया जाता है तो मुसीबत में फंसती है फिर दोबारा हरियाणा।
तो सरकार के लिए वाकई एक चुनौती पूर्ण समय है। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान रावी। तो जैसा कि हमने सुना, जाट आरक्षण की मांग पर डटे आंदोलनकारी आज दिल्ली में अपनी आवाज उठाएंगे।
नमस्कार भारत, शॉर्टवेव 49, 41, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 5875, 7430, 9560, 11995 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज़ पर।
आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के छठे चरण के मतदान के लिए आज शाम प्रचार कार्य थम जाएगा। इस चरण में आजमगढ़, गोरखपुर, मऊ, देवरिया समेत कई जिलों में 49 सीटों पर मतदान होना है। आजमगढ़ पर सबकी नजरें टिकी हैं क्योंकि समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव यहां से सांसद हैं। आजमगढ़ में कुल 10 विधानसभा सीटें आती हैं। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश के राज्यपाल रह चुके राम नरेश यादव की गिनती यहां के दिग्गज नेताओं में होती थी। पिछले दिनों पूर्वांचल के दौरे पर गए हमारे सहयोगी समीर आत्मन मिश्र ने राम नरेश यादव के विधानसभा क्षेत्र फूलपुर का जायजा लिया। सुनिए उनकी ये विशेष रिपोर्ट।
आजमगढ़ जिले की फूलपुर तहसील से करीब 5 किलोमीटर अंदर जाने पर पड़ता है आंधीपुर गांव। इस गांव तक जो सड़क जा रही है उसकी स्थिति पूर्वांचल की तमाम उन सड़कों जैसी ही है जहां गाड़ियां 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ज्यादा नहीं चल सकती। आंधीपुर गांव जनता पार्टी और फिर कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे राम नरेश यादव का पैतृक गाँव है। फूलपुर के स्थानीय पत्रकार रवि प्रकाश सिंह बताते हैं,
राम नरेश जब भी आते थे यूपी का दौरा करते थे तो अपने गांव आधीपुर जरूर आते थे और अपने लोगों से हर चौक चौराहे डाकवाले जाकर अपने लोगों से मुलाकात करते थे।
राम नरेश यादव 1977 से 1979 तक राज्य के मुख्यमंत्री रहे, राज्यसभा सदस्य रहे और फूलपुर विधानसभा सीट से कई बार विधायक भी रहे। मृत्यु से कुछ पहले तक वो मध्य प्रदेश के राज्यपाल भी रहे। राम नरेश यादव की छवि यूं तो ईमानदार नेता के रूप में थी लेकिन राज्यपाल का कार्यकाल उनका कुछ विवादों भरा रहा। हमारी जिज्ञासा ये थी कि यहाँ की युवा पीढ़ी उनको किस रूप में जानती है।
जानते हो राम नरेश यादव कौन थे?
मैं कहाँ हूँ।
हाँ जानते हैं, बहुत दिन से मुख्यमंत्री थे, उसके पास राज्यपाल थे, अब जो है वो स्वर्गवास उनका हो गया।
चौराहे पर ही एक बुजुर्ग व्यक्ति फयाज अहमद हमारी बातचीत को सुन रहे थे। वो इस बात को नहीं पचा पाते हैं कि युवा पीढ़ी राम नरेश यादव को नहीं जानती।
राम नरेश यादव जी की चर्चा हो रही थी अभी, उनका नाम तक नहीं जानते, इसी इलाके क्यों रहने वाले?
नहीं गलत कहते हैं, बच्चे सभी नाम जानते हैं, राम नरेश जी का नाम कौन नहीं जानता?
सब बच्चों से पूछ रहा हूँ, कोई जानता ही नहीं।
गलत बता रहे हैं, कौन नहीं जानता उनको?
का नाम हम तो आपके सामने पूछा हमने, देखिए
छोटा बच्चा हो सकता है।
आज भले ही राम नरेश यादव के घर जाने वाली सड़क की भी हालत दयनीय हो लेकिन यहाँ के लोग विकास कार्य के लिए भी उन्हें याद करते हैं। प्राइमरी स्कूल के अध्यापक चंद्रदेव यादव कहते हैं,
उनको लोग बाबूजी के नाम से याद करते हैं, उनके नाम की चर्चा आज भी है यहाँ लेकिन सिर्फ राम नरेश जी की, उनके बाद यहाँ उनका कुछ है नहीं। ईमानदार में से रहे यहाँ, अभी जो कुछ है वो राम नरेश जी की ही देन है।
वहीं पास में ही एक दुकान चलाने वाले वीरेंद्र कहते हैं कि इस इलाके में विकास के नाम पर जो कुछ भी हुआ है वो उन्हीं की वजह से हुआ है। दरअसल राम नरेश यादव ने 1977 में लोकसभा में आजमगढ़ का प्रतिनिधित्व किया लेकिन मुख्यमंत्री बन जाने के बाद उन्होंने 1977 में ही एटा जिले की निधौली कला सीट से विधानसभा का प्रतिनिधित्व किया। इसके बाद वो शिकोहाबाद से विधायक रहे। वीरेंद्र कुमार कहते हैं,
ज्यादातर के वो शिकोहाबाद या लखनऊ रहने लगे, पब्लिक बीच में आना जाना कम हो गया।
शिकोहाबाद से एमएलए हुए थे वो और वहाँ एमएलए होने के बाद फूलपुर को एकदम उन्होंने छोड़ दिया तो यहाँ के लोग उनसे हट गए।
हालांकि 1996 से 2007 तक उन्होंने विधानसभा में यहाँ का प्रतिनिधित्व किया। आज इसी सीट से समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव लोकसभा के सदस्य हैं। जानकारों का कहना है कि 2007 कोई बहुत पुरानी बात नहीं है लेकिन यदि नई पीढ़ी राम नरेश यादव जैसे नेता को नहीं जानती या फिर कम जानती है तो ये राम नरेश यादव की कार्यशैली या उनकी लोकप्रियता पर कम, युवाओं की जागरूकता पर कहीं बड़ा सवाल खड़ा करता है। समीर आत्मज मिश्र, BBC आजमगढ़।
पूर्व मुख्यमंत्री राम नरेश यादव के निर्वाचन क्षेत्र का दौरा किया था हमारे सहयोगी समीर आत्मज मिश्र ने। दिल्ली विश्वविद्यालय के रामजस कॉलेज में हिंसा का विरोध करके चर्चा में आई गुरमेहर कौर अब अपने परिवार के साथ पंजाब के जालंधर में हैं। उनका परिवार अपनी बेटी की सुरक्षा को लेकर चिंतित जरूर है, लेकिन उनके दादा को भरोसा है कि दिल्ली में कॉलेज में हिंसा के खिलाफ खड़े सभी छात्र गुरमेहर के साथ हैं। गुरमेहर उस समय चर्चा में आई थी जब उनका एक फोटो वायरल हो गया जिसमें लिखा था, मेरे पिता को पाकिस्तान ने नहीं बल्कि युद्ध ने मारा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का विरोध करने के बाद गुरमेहर को न सिर्फ धमकियां मिल रही थीं बल्कि सोशल मीडिया पर कई हस्तियों ने उनका मजाक बनाया था। फिलहाल गुरमेहर के परिवार ने जालंधर में पुलिस से सुरक्षा दिए जाने की मांग की है। रविंदर सिंह रॉबिन की रिपोर्ट।
जालंधर में दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा गुरमेहर कौर के दादा कमलजीत सिंह ने जालंधर के डिप्टी कमिश्नर कमल किशोर यादव से मुलाकात कर सुरक्षा की गुहार लगाई है। गुरमेहर के दादा ने कहा कि मीडिया ने उनका काफ़ी साथ दिया है और सब लोग उनके साथ हैं और उन्हें पूरा विश्वास है कि गुरमेहर का कोई बाल भी वांका नहीं कर सकता, लेकिन उन्होंने गुरमेहर की पढ़ाई के दौरान कोई ऊंच नीच ना हो जाए इसके लिए उसकी सुरक्षा की अपील की है। अपने मेमोरेंडम के माध्यम से कमलजीत सिंह ने कहा,
जितना भी जो कुछ वहाँ हुआ है उसमें शांति चाहते हैं, मैं दादा हूँ उसकी शांति चाहते हैं सब लोग, कि वहाँ दिल्ली में जो विद्या मंदिर हैं जिनको हम विश्वविद्यालय बोलते हैं या यूनिवर्सिटी बोलते हैं, वहाँ ऐसे झगड़े नहीं होने चाहिए। सारा मेरा जितना भाईचारा सारा मेरे साथ है, दसम पिता गुरु गोबिंद सिंह जी के जितने भी आपको बच्चे खड़े दिखाई दे रहे हैं सारे मेरे साथ हैं।
सिख तालमेल कमेटी के हरपाल सिंह चड्ढा कहते हैं,
अपने दिल की जो भावना से वो जो एक लफज जो रखे हैं उस लफज को देखो, जो सियासतदान है जहाँ जो पॉलिटिकल अपने आप को बहुत वो उच्च ओहदे वाले समझते हैं उसने उस बात ही घुमा दी, ट्विस्ट ही कर दी, जबकि वो जो लड़की है वो सिर्फ और सिर्फ एक शांति की एक पीस की बात कर रही, उसमें उसने कुछ भी ऐसी कोई वल्गैरिटी या कोई ऐसे कोई एलिगेशन या ऐसे कोई कम्युनल एंटी ऐसे कोई वर्ड्स नहीं यूज करे। ओनली एंड ओनली पीस की अगर बात करनी भी इस देश में गुनाह है तो फिर तो इस देश में रहने का या इस देश में अपने आप को जीवन बसर करने का कोई हमारे जैसे का कोई हक ही नहीं बनता।
जालंधर के डिप्टी कमिश्नर कमल किशोर यादव ने कहा है कि गुरमेहर को सुरक्षा दी जा रही है और जरूरत महसूस हुई तो उसे और भी सुरक्षा बड़ी देंगे।
मेमोरेंडम आज दिया गया मुझे, उसके अंदर उन्होंने मेनली दिल्ली पुलिस से जो FIR में नामजद लोग हैं उनको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करने के लिए अपील की है, और उसके अलावा दिल्ली में जब भी गुरमेहर रहती है तब उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए दिल्ली पुलिस ये इंश्योर करे, ये पंजाब सरकार की तरफ से उनको मैसेज लगवाने के लिए उन्होंने मुझे अपील की है।
गुरमेहर कौर ने रामजस कॉलेज में छात्रों के बीच हुई हिंसा की निंदा करते हुए भाजपा के छात्र संगठन ABVP के खिलाफ ट्विटर पर अपनी एक तस्वीर पोस्ट की थी जिसे लेकर उन्हें सोशल मीडिया पर धमकियां मिली थी, जिसे लेकर दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है।
रविंदर सिंह रॉबिन की रिपोर्ट आप सुन रहे थे। और अब कार्यक्रम में वक्त है अखबार के पन्ने पलटने का। अमर शर्मा, क्या कह रहे हैं अखबार?
जी, जैसा कि आपने अभी इस रिपोर्ट में सुना, गुरमेहर कौर का मामला आज उसको लेकर जो बवाल था वो जारी रहेगा, और आज ABP एक बड़ा प्रोटेस्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी में करने जा रही है, और उसके साथ ही आज जाट आरक्षण को लेकर भी जाट भी दिल्ली आ रहे हैं। तो इसलिए आज दिल्ली पुलिस ने भी कहा है कि आज यातायात उनके लिए चुनौती है आज का दिन। और खबर है कि आज जाट आज दिल्ली में दूध नहीं देंगे। हिंदुस्तान में देखिए इस खबर को आप देख सकते हैं कि आज उन्होंने एक दिन के लिए आज आसपास के जितने भी राज्य के जाट हैं दिल्ली को दूध नहीं देंगे। उससे एक आपको और खबर बताऊं, जनसत्ता की जो पहली खबर है कि मोदी ने GDP आंकड़ों पर अपनी पीठ थपथपाई, जो तमाम जो है कि नोटबंदी के बाद GDP के आंकड़ों को
जैसे कहा जा रहा था कि नोटबंदी का असर जो है देखने को
मिलेगा। जी जी जी, तो इस पर उन्होंने कल उत्तर प्रदेश में चुनावी रैली में कहा कि ये जो CSO का जो आंकड़ा था वो हार्ड वर्क और हार्ड टॉक, कई अखबारों ने इसे अपनी बनाया, हिंदुस्तान ने भी इसे अपनी खबर बनाया कि हार्ड वर्क पर हार्ड टॉक भारी,
हार्वर्ड पर हार्वर्ड यानी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का जिक्र कर रहे हैं
जी। लेकिन आपको ठीक इसके ऊपर इतर हिंदू ने जो अपनी पहली खबर बनाया है उसको चुनौती देते हुए कि कांग्रेस ने कल इन आंकड़ों को चुनौती दी है जो CSO ने जो जारी किया है आंकड़ा, और आनंद शर्मा ने अपनी प्रेस ब्रीफिंग में कहा है कि ये आंकड़े नोटबंदी के बाद जो इतनी नौकरियां गई हैं और प्रोडक्शन पर जो असर पड़ा है, उत्पादन पर, उन आंकड़ों को नहीं शामिल किया गया इसमें, और इससे भारत की छवि पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नुकसान बट्टा बैट लग सकता है इसे।
बेसिकली आनंद शर्मा ये कह रहे हैं कि ये आंकड़ों की जो है वो बाजीगरी दिखाई गई है।
जी, और कल मोदी ने एक और बयान दिया है राहुल गांधी पर, और उन्होंने उनका बिना नाम भी उनका मजाक उड़ाया है और कहा है कि मणिपुर में नारियल का जूस निकलता है। लेकिन हमारी बीबीसी की साइट पर पन्ने पर एक खबर है जो वास्तविकता में बताती है कि राहुल गांधी ने ऐसा कोई बयान दिया ही नहीं था। आप देख सकते हैं, एक और खबर है, प्रधानमंत्री पर बिहार के मंत्री ने अभद्र टिप्पणी की, और जिसको लेकर काफ़ी बवाल हुआ विधानसभा में, और उन्हें बर्खास्त करने की मांग तक की गई है। आपको एक और खबर की ओर आपका ध्यान दिलाएंगे कि 32 नए मेडिकल कॉलेजों की मान्यता रद्द हो सकती है, और जिसमें मध्य प्रदेश के 4 हैं और हरियाणा और राजस्थान और छत्तीसगढ़ के 2-2 कॉलेज शामिल हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया अमर, बहुत संक्षेप में खबरों को समेटने के लिए। तथाकथित चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट को आज पूरी दुनिया में आतंक का क्रूर चेहरा माना जाता है। आज दुनिया जहां में इसी बात की पड़ताल कि सीरिया व इराक से निकलकर इस्लामिक स्टेट से अफगानिस्तान और आसपास के क्षेत्रों को किस तरह का खतरा है। दुनिया जहां, January 26, 2015, अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि थे। उसी दिन इस्लामिक स्टेट के प्रवक्ता अबू मोहम्मद अल अदनानी ने अपनी खुरासान ब्रांच स्थापित करने की घोषणा की। खुरासान एक पुराना नाम है जिसके दायरे में अफगानिस्तान और आसपास का इलाका आता है। तब ये पहला मौका था जब इस्लामिक स्टेट ने अरब जगत से बाहर अपने पैर पसारने की आधिकारिक घोषणा की थी।
बीबीसी समाचार सुशीला सिंह से। इस्लामिक स्टेट के चरमपंथियों ने यह दावा किया है कि उन्होंने अपने संगठन की एक नई इकाई बनाई है जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के क्षेत्रों में काम करेगी।
घोषणा के कुछ हफ्तों बाद ही इस्लामिक स्टेट ने अफगानिस्तान के कम से कम 5 प्रांतों में अपनी मौजूदगी का एहसास कराया था। ये प्रांत थे हेलमंद, जाबुल, फराह, लोगार और नंगरहार।
अभी हम यहाँ 3 सूबों में मौजूद हैं, लेकिन हम लड़ाई सिर्फ 1 सूबे में कर रहे हैं, बाकी सूबों में हम अपने कमांडर के अहकाम का इंतजार कर रहे हैं।
इस्लामी खिलाफत सरम ब्याद कले दे उदागी फुकियादत के जिहाद को, अल्हम्दुलिल्लाह।
बीबीसी पश्तो सेवा के संवाददाता दाऊद आजमी से मैंने पूछा कि 2 सालों में इस्लामिक स्टेट को अफगानिस्तान में अपना दायरा बढ़ाने में कामयाबी मिली या फिर पिछड़ना पड़ा।
2 सालों में इस ग्रुप ने बहुत कोशिश की कि अपने लिए कोई टेरिटरी बना सके। अफगानिस्तान के ईस्ट में नंगरहार सूबे में उन्होंने कुछ इलाकों पर कब्जा कर लिया, और इसके अलावा उन्होंने कोशिश की कि अफगानिस्तान के हिलमंद और फराह में कंट्रोल हासिल कर ले। लेकिन इनकी बदकिस्मती ये थी कि अफगान तालिबान भी इनके खिलाफ थे और अब भी हैं, और अफगान हुकूमत ने भी और नेटो और अमरीकी मिलिट्री ने भी इनके खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशंस किए। तो अब इसकी हालत ये है कि नॉर्दर्न प्रोविंसेस में भी कुछ छोटे से ग्रुप्स हैं, लेकिन असल ताकत नंगरहार सूबे में है जो कि पाकिस्तान के साथ बहुत करीब है, उसके साथ बहुत नज़दीक है।
इस्लामिक स्टेट उसी अफगानिस्तान पाकिस्तान में पैर पसारने की कोशिश कर रहा है जो कि तालिबान और अलकायदा का गढ़ माना जाता है। लेकिन जिस जमीन पर पहले से ही इस तरह के चरमपंथी संगठन काम कर रहे हों, वहां इस्लामिक स्टेट कहां से आया? इन चरमपंथी संगठनों की सोच में कितना अंतर है? मध्य पूर्व मामलों के जानकार कमर आगा कहते हैं,
तालिबान जो है ये हनफी स्कूल ऑफ इस्लामिक थॉट को बिलीव करते हैं, और अरब देशों में काफी इन्फ्लुएंस हमको जो नजर आता है वो है हम्बली स्कूल ऑफ थॉट का, जिसका के वहाबी सल्फी आइडियोलॉजी है, और यहाँ पे जो है देवबंदी आइडियोलॉजी है जो हनफी की है, जो बहुत स्ट्रिक्ट इस्लाम में काम करती, मगर दोनों का पॉलिटिकल अलायंस काफी स्ट्रांग है। जो ग्रुप तालिबान से खुश नहीं थे उसकी लीडरशिप से, उनमें से कुछ ने जाके ISS को ज्वाइन कर लिया था।
अफगानिस्तान में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के बाद इस्लामिक स्टेट को अमेरिका के हवाई हमलों और अफगान सेना की जमीनी कार्रवाई में अपने सैकड़ों लड़ाकों को खोना पड़ा है। इतना ही नहीं, अफगान तालिबान के साथ टकराव में भी इस्लामिक स्टेट के सैकड़ों लड़ाके मारे जा चुके हैं। इनमें अफगान पाकिस्तान ब्रांच के संस्थापक नेता हाफिज सईद खान और उनके खास आदमी भी शामिल हैं। ان میں سے زیادہ تر امریکہ کے ڈرون حملوں میں مارے گئے۔ تو دو سال بعد افغانستان میں اسلامک اسٹیٹ کے کتنے لڑاکے موجود ہیں؟ داؤد اعظمی،
افغانستان میں 1,000 اور 5,000 کے درمیان بتائی جاتی ہے۔ پچھلے دو سالوں میں ان کے کئی لیڈرز اور جنگجو مارے جا چکے ہیں، ان میں حافظ سعید خان بھی تھا جو کہ پہلے پاکستانی طالبان موومنٹ کا ایک کمانڈر تھا اور اس کے بعد انہوں نے داعش جوائن کیا۔
افغانستان میں اپنی موجودگی درج کرا کے افغان طالبان کو اسلامک اسٹیٹ نے سیدھی چنوتی دی تھی۔ ایسا کر کے اسلامک اسٹیٹ افغان طالبان لڑاکوں کو کھدیڑنا چاہتا تھا اور یہ بھی چاہتا تھا کہ طالبان القاعدہ گٹھ بندھن میں شامل لڑاکے اس کا ہاتھ تھام لے، لیکن استھانیہ سمرتھن و راجنیتک بل حاصل کرنے کی قواعد میں اسلامک اسٹیٹ کو زبردست سنگھرش کرنا پڑا اور اس نے افغان طالبان سہت ہر کسی کو اپنا دشمن بنا لیا۔ اسلامک اسٹیٹ کو اس سمے سیریا و عراق میں گٹھ بندھن سیناؤں سے لگاتار ہار مل رہی ہے۔ اسلامک اسٹیٹ افغانستان ہی نہیں پاکستان میں لگاتار حملے کرتا رہا ہے۔ حال ہی میں پاکستان میں اسلامک اسٹیٹ نے صوفیوں کے لال شہباز کلندر پر حملے کی ذمہ داری سویکار کی۔ افغانستان اور پاکستان میں اسلامک اسٹیٹ کا بھوشیہ سیریا و عراق میں اس کی دشا و دشا پر نربھر ہے۔ اگر سیریا یا پھر عراق میں اسلامک اسٹیٹ کمزور یا پھر ہارتا ہے تو دکشن ایشیا کی اور بڑھ کر وہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے۔
تو یہ ایک پیراڈاکس ہے، اگر سیریا اور عراق میں اسلامک اسٹیٹ کو شکست ہوتی ہے تو اس کا ایک تو اثر پڑے گا ساؤتھ ایشیا اور سینٹرل ایشیا میں، داعش گروپ یا اسلامک اسٹیٹ کمزور ہوگا، لیکن اس کا ایک منفی اثر یہ بھی پڑ سکتا ہے کہ جو ہزاروں لوگ اس ریجن سے گئے ہیں اور سیریا اور عراق میں لڑ رہے ہیں، اگر وہ واپس آ گئے تو اسلامک اسٹیٹ ساؤتھ ایشیا اور سینٹرل ایشیا میں اور مضبوط بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ ان کو نئے لوگ ملیں گے جو کہ ٹرینڈ بھی ہیں اور ریڈیکلائزڈ بھی ہیں۔
اسلامک اسٹیٹ کی رڑنیتی پاکستان اور افغانستان سے باہر ابھی تک بھلے ہی سفل نہ ہو پائی ہو، لیکن کھیتر میں اس سے سہانبھوت رکھنے والے موجود ہیں۔ یہ ساری باتیں افغانستان کے سنگھرش کو اور جٹل بنا دیتی ہیں اور پورے کھیتر کے لیے دیرگھ کالین خطرے کی سوچنا دیتی ہیں۔ اور اب کارکرم میں کھیل کی خبریں۔
नमस्कार, खेल समाचारों के साथ मैं हूं राखी शर्मा। निशानेबाज जीतू राय ने बेहतरीन वापसी का नजारा पेश करते हुए कल ISSF विश्व कप में पुरुषों की 50 मीटर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीत लिया। वहीं एक अन्य भारतीय अमनप्रीत सिंह रजत पदक हासिल करने में कामयाब रहे। जीतू ने इससे पहले 10 मीटर पिस्टल में कांस्य पदक जीता था। 50 मीटर पिस्टल के फाइनल में जीतू ने करनी सिंह शूटिंग रेंज पर 230.1 का स्कोर बनाया जो विश्व रिकॉर्ड है। दूसरी तरफ फाइनल में अधिकतर समय बढ़त पर रहने वाले अमनप्रीत को 226.9 के स्कोर के साथ रजत पदक के साथ संतोष करना पड़ा। ईरान के वाहिद गुलखानदन ने 208.0 का स्कोर बनाकर कांस्य पदक जीता। अमनप्रीत का ये पहला विश्व कप फाइनल था, जाहिर है उनके लिए ये जीत खास है।
मेरा कल भी इवेंट था जी, 10 मीटर था। कल मेरा इवेंट अच्छा नहीं गया था तो कल काफी उदास था मैं उसको लेके, तो के अभी अपने इंडिया में हो रहा है, मौका था बहुत अच्छा तो कर नहीं पाए। वही है, हम मतलब हमेशा सोचते होते थे कि कभी किसी कोई दिन आएगा जब हम भी इस मुकाम तक पहुंचेंगे, तो आज फाइनली वो दिन था, मजा आया जी बहुत।
भारतीय निशानेबाज अब म्यूनिख में होने वाले ISSF विश्व कप में हिस्सा लेंगे। और वहीं भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में कल विजय हजारे ट्रॉफी में झारखंड की टीम कम स्कोर का बचाव कर जीत दर्ज करने में कामयाब रही। झारखंड ने सौराष्ट्र के खिलाफ मैच में महज 125 रन बनाए थे, जिसके बावजूद 50 ओवर के इस मुकाबले में वो 42 रन से जीत दर्ज करने में कामयाब रही। एक वक्त ऐसा लग रहा था कि झारखंड को मैच में हार का सामना करना पड़ेगा, लेकिन धोनी ने अपने गेंदबाजों का न सिर्फ बेहतरीन तरीके से उपयोग किया बल्कि 4 कैच भी लपके उन्होंने बल्ले से 23 रन बनाए। खेल समाचारों में फिलहाल इतना ही।
राखी शर्मा खेल समाचार सुना रही थी। और इससे पहले की कार्यक्रम में हम आपसे विदा लें, मुख्य समाचार एक बार फिर से सुन लेते हैं।
बीबीसी समाचार। हरियाणा में सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में जाटों को आरक्षण की मांग कर रहे आंदोलनकारी आज दिल्ली में इकट्ठा होंगे। ब्रिटेन की संसद के उच्च सदन ऑफ हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने उस प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया है जिससे ब्रिटेन के यूरोपीय संघ छोड़ देने के बाद भी सरकार को ब्रिटेन में रह रहे 30 लाख से ज्यादा यूरोपीय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करनी होगी और इन्हें ब्रिटेन में रहने की अनुमति देनी होगी। फ्रांस में मध्य दक्षिणपंथी राष्ट्रपति उम्मीदवार फ्रांसवा फिलो ने प्रत्याशी पद छोड़ने से इनकार कर दिया है, बावजूद इसके कि मजिस्ट्रेट ने उनसे कहा कि उनकी आधिकारिक जांच होगी। बीबीसी समाचार।
तो बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत के इस अंक में बस इतना ही। आज स्टूडियो संभाला था तिलक राज भाटिया ने। आपको बता दें, चाहे खेल हो, राजनीति हो, हमारा पन्ना यानी कि bbchindi.com पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। शाम 7:30 बजे दिन भर कार्यक्रम लेकर हम फिर से उपस्थित होंगे। फिलहाल मोहनलाल शर्मा को विदा दें, नमस्कार।